السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. हमने अल्लाह ताला के नाम जुल जलाली वल इकराम पे बात की थी। आज अल इकराम से ही अल्लाह ताला कितना करीम है, इस चीज़ को उसने जो कुरान करीम में जिक्र फरमाया है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान किस चीज़ ने तुझे तेरे करीम रब से धोखे में डाल दिया, या ये इंसान कह के अल्लाह ताला ने अपनी इतनी बेशुमार और बड़ी अजीम और मजबूत और बहुत ह्यूज मखलूकात में एक छोटी सी उसकी मखलूक है इंसान, उसको पुकारा। ये इट्सेल्फ एक इंसान के लिए बड़े ऑनर की बात है कि रब्बुल आलमीन इंसान को पुकारे। और देखें, या अय्युहन्नास नहीं है कि सब लोगों, ए इंसान जिसमें मुझे और आपको अकेले अकेले एड्रेस किया गया, ए इंसान हर इंसान से सवाल है, चाहे वो काफिर है, मोमिन है, और मर्द है या औरत है, बूढ़ा या बच्चा है, उसे पूछा गया कि किस चीज़ ने तुझे धोखे में डाल दिया, किससे? अल्लाह सुबहाना ताला से जो अल करीम है, उसका ये जो नाम है और अकरम से ही करीम भी है। तो इस नाम पे उम्मीद है आपने गौर किया होगा और ये सोचा होगा कि वाकई किस चीज़ ने हमें अल्लाह ताला से दूर किया हुआ, जो करीम रब है, जो इतना सखी रब है, जो इतना अता करने वाला रब है, जिसने अपने दरवाजे खोले हुए हमारे लिए, कि इंसान दूर चला जाता है, वो उससे दूर नहीं जाता। तो ये नाम जो है, ये इंसान को दिखाता है कि अल्लाह ताला का दरवाज़ा तो खुला हुआ है, क्योंकि वो तो खुद पुकार रहा है, या अय्युहल इंसान किधर चले गए हो तुम, किसने तुम्हें धोखे में डाल दिया, तुम्हारा रब तो बड़ा करीम है, फिर तुम क्यों उससे इतने दूर हो, तो वापस आ जाओ। इसमें एक मैसेज है वापसी का, कहाँ जाओगे उससे दूर जाके, कौन सी ज़मीन तुम्हें पनाह देगी, कौन सा आसमान तुम्हें छत देगा, कौन सा रिश्ता तुम्हें अल्लाह ताला से ज़्यादा मोहब्बत करेगा, कौन तुम्हारी उससे ज़्यादा केयर करेगा, कौन तुम पे उससे ज़्यादा शफकत करेगा, रहम करेगा, कौन उससे ज़्यादा तुम्हें अता करेगा, कौन है उससे ज़्यादा तुम्हारी सुनने वाला, कौन है उससे ज़्यादा तुम्हारे से करीब, कौन है उससे ज़्यादा तुम्हारे बातों को जानने वाला। इंसान मायूस होके कहता है कि अब मेरे लिए कोई जगह नहीं, अब तो मैं बहुत दूर निकल गया, अब कोई वापसी नहीं, बस अब तो जहन्नुम ही है मेरे लिए। तो अल्लाह सुबहाना ताला ने बता दिया कि नहीं, तुम्हारे लिए भी उसके दर खुला हुआ है और अभी भी खुला है, वापस चले आओ, क्योंकि वो रब बड़ा ही करीम रब है। इसीलिए किसी और चीज़ को करीम नहीं कहना चाहिए, रमज़ान करीम नहीं है, रमज़ान उल मुबारक है, अल्लाह ताला की ज़ात है जो अल करीम है, अल्लज़ी खलक़क फ़सव्वाक फ़अदलक, उसने तो तुम्हें पैदा किया है और इसलिए वो तुम पर करम करने वाला है, उसने तुम्हारे नोक पलक संवारी है, तुम्हें बैलेंस दिया है, फिर तुम कैसे उससे दूर जा सकते हो। तो इस आयत को चाहिए हम ये कि हम काफरों को भी बताएं, सूरह इन्फितार की ये आयत, और उन लोगों को भी जो अल्लाह ताला से दूर चले गए हों, और उनको वापस लाने की कोशिश करें। इसी तरह और भी अल्लाह ताला के जो अस्माए हुस्ना हैं, तमाम ही बहुत खूबसूरत नाम है, इससे लोगों को आशना कराएं, लोगों को बताएं कि अल्लाह ताला कौन है। जानते हैं हमारी नमाजें खुशू से खाली क्यों होती हैं, इसलिए कि हम खुद भी अल्लाह ताला को नहीं जानते, नहीं पहचानते। जब हम अल्लाह ताला को पहचानने लगेंगे ना, तो फिर हमारी नमाजों में खुशू आ जाएगा, वाकई दिल लगेगा, क्योंकि हमें पता होगा कि हम किससे बात कर रहे हैं। लेकिन हमने अपना दिल लगाया हुआ कहीं और, हम किसी और जगह परफेक्शन तलाश करते हैं, कभी पैसे में, कभी घरों में, कभी चीजों में, कभी किसी ने किसी इंसान में ये तलाश किया हुआ कि इससे शादी कर लूं तो परफेक्शन हो जाएगी मेरी जिंदगी में, और इस ये घर ले लूं तो बस मेरी जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी, और इतना पैसा कमा लूं तो बस सब अच्छा हो जाएगा और कमाल हो जाएगा। हालांकि वो ही रिश्ता होता है जब शादी हो जाती है, लड़ाइयाँ होने लगती हैं, वही घर होते हैं फिर खरीद लेते हैं, उसके बाद वो आम सा ही घर लगने लगता है, वही पैसा होता है लेकिन फिर भी कोई खुशियाँ हासिल नहीं होती और दिल बेसकून रहता है। तो परफेक्शन अगर चाहते हैं कहीं किसी चीज़ के साथ दिल लगाना चाहते हैं जहाँ से सकून मिले, तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, क्योंकि वो परफेक्ट है, बाकी किसी के अंदर भी परफेक्शन नहीं है। किसी चीज़ को भी आप ले लेंगे तो इन द एंड आपको लगेगा इसके अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत सारे नकायस हैं, नक्स हैं, फ्लॉज हैं, वीकनेसेस हैं, क्योंकि वो चीजें हैं और अल्लाह ताला की जात परफेक्ट है। जब आप उस परफेक्ट को जानने लगते हैं और उससे अपना दिल लगाते हैं, तो फिर आप देखते हैं कि फिर इंसान को करार भी आता है, सुकून भी आता है, फिर इंसान वाकई समझ लेता है कि वो एक जात है जो मोहब्बत के काबिल जात है। बाकी तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाए, वो ही तो है जो ऐसा है कि उसकी सारी सिफात कमाल वाली है, और जब किसी की इतनी कमाल की सिफात हो तो इंसान को उससे फिर मोहब्बत हो जाती है। तो वो ही है जो आपकी मोहब्बत को ले सकता है, समो सकता है, क्योंकि उसके बाद को फिर मायूसी नहीं है, जबकि बाकी किसी से भी मोहब्बत करेंगे तो उसके बाद फिर मायूसी ही होती है कि इंसान सोचता है आए इससे मैंने अपना दिल लगाया और ये तो ऐसा निकला, और इससे मैंने ये समझा और इसने तो ये किया। तो सिर्फ एक अल्लाह ताला की जात है कि जब आप उसको समझने लगे और उससे मोहब्बत करने लगे, तो फिर आप देखेंगे कि वैसी जात कोई और है नहीं, और जैसी आप को सेटिस्फैक्शन मिलेगी और सुकून मिलेगा और लज्जत मिलेगी, वो कहीं और नहीं मिलेगी, और यही चीज अल्लाह ताला की एक सिफत है जो अलमजीद है, मजद वाला, मजद में उसकी कि वो कितनी बुजुर्गी वाला है, कितनी अजमत वाला है, ये माने आते हैं। यानी मजीद का माना है सारी तारीफों के लायक, और तारीफ के लायक कोई तभी हो सकता है जब वो वाकई उसके अंदर ऐसी सिफात मौजूद हो, और इसी वजह से फिर इंसान जब उससे मोहब्बत करता है तो मायूस नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर इतनी कमाल की सिफात है, इंसान कभी मायूस हो ही नहीं सकता। बाकी तो सारे वीक है, वो कोशिश भी करें तो आपके जो पैमाने हैं उनके ऊपर वो नहीं पूरे उतर सकते। और इसका माना है अलमजीद का, वो जो शराफत और करामत वाली जात है जिसके तमाम कामों में हिकमतें हैं, और उसकी अता और बख्शिश बेशुमार है, जो अपने बंदों पर नेमतों के जरिए एहसानात करने वाला है। अल्लाह हु अकबर, वो मजीद है, यानी उसकी अफाल भी, उसके सिफात भी, उसकी जात भी, सब कमाल के हैं, परफेक्ट हैं। तो किसी और में कैसे ये हो सकता है? दुनिया में आप देख लें, कोई बादशाह है या कोई बड़े से बड़ा आदमी है, कोई कितना ही बड़ा हुक्मरान है, तब भी उनके अंदर परफेक्शन नहीं हो सकती, उनको भी किसी की जरूरत है, किसी ना किसी की कि वो उसको संभालें, किसी ना किसी की कि वो उसका ख्याल करें, जो उसकी बादशाहत को चलाएं, जो उसके बाजू बने। तो अल्लाह ताला की जात है जो सिर्फ अपनी जात में भी और अपने तमाम कामों में भी मजीद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की परफेक्शन को इस तरह बयान फरमाया, फरमाया अल्लाह ताला सोता नहीं है और उसके लायक भी नहीं है कि वो सोए, वो मीज़ान को ऊपर और नीचे करता है, तराजू को, और वो आमाल जो दिन के हैं उसकी तरफ चढ़ते हैं रात से पहले, और रात के आमाल उसकी तरफ चढ़ते हैं दिन से पहले। यानी जो भी हम दिन में करते हैं रात से पहले पहले उसकी तरफ चला जाता है। आपको पता है ना, असर के बाद जाता है, और रात के भी आमाल उसकी तरफ चढ़ते हैं दिन निकलने से पहले पहले। उसका हिजाब नूर है, और अगर वो अपना हिजाब उठा दे तो उसके चेहरे का नूर जिस जिस चीज तक उसकी नजर पहुंचती है उसको जला दे। और अल्लाह ताला की नजर कहाँ तक पहुंचती है? पूरी मखलूक तक। तो इसका मतलब है हर चीज जल जाए। वो ऐसा है, इतना परफेक्ट है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने कुराने मजीद में फरमाया है, जुल अर्शिल मजीदु फ़ालु लिमा युरीद। अर्श वाला वो अल मजीद है। अगर मजीदू पढ़े तो अर्श वाला अल मजीद है, वो जो चाहे करे। और अगर मजीदी पढ़े, जुल अर्शिल मजीदी, तो फिर अल्लाह ताला का अर्श मजीद है, यानी वो भी ग्लोरियस है, वो भी बुजुर्गी वाला है, मैग्निफिशेंट है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला का अर्श उसकी सबसे अजीम मखलूक है, तो उसके लिए भी मजीद का लफ्ज हम कह सकते हैं। वो ऐसी मखलूक है अल्लाह ताला की के जो सबसे बड़ी मखलूक भी है उसकी। जैसे हमें हदीस से पता चलता है कि सात आसमान अल्लाह ताला की कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे छल्ला सहरा में पड़ा हो। अगर कोई सहरा और उसमें एक छल्ला पड़ा हो तो वो तो नजर भी नहीं आएगा। सहरा इतना बड़ा होता है, तलाश करना चाहें आप एक अंगूठी का छल्ला पड़ा हो, कैसे आपको लकोदक सहरा में वो मिलेगा? तो सात आसमान कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं। जबकि आप देखें, हम जिस आसमान तले जिंदगी गुजारें, ये आसमाने दुनिया, ये ही इतना वसी है कि जितने सितारे सैयारे साइंसदानों को आज तक मालूमात हुई हैं, वो कहते हैं कायनात का वो एक जर्रा है सिर्फ जो हमें अभी तक पता चला है। और उसमें ही उन्होंने कहा है कि एक गैलेक्सी में 400 बिलियन सितारे हैं, 400 बिलियन, और 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज कहते हैं अभी तक हमें पता चली हैं। अब ये सिर्फ आसमाने दुनिया पे है, तो सात आसमान मिला लें वो कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं कि जैसे आप एक छल्ला देखें सहरा। इतने छोटे हैं, कुर्सी कितनी बड़ी है, और कुर्सी अर्श के मुकाबले में कैसे है? जैसे सहरा में छल्ला पड़ा, कुर्सी भी इतनी छोटी है अर्श के मुकाबले में, इतनी टाइनी चीज है। और कुर्सी के बारे में आता है कि ये तो फुट स्टूल को कहते हैं, यानी हम ये नहीं कैफियत जानते फुट स्टूल अल्लाह ताला के हाँ कैसा है क्या है, बस हमें इतना पता है। तो एक तो कुरान करीम में अर्श के लिए आया मजीद, और एक कुरान के लिए आया। हम भी कहते हैं ना कुरान मजीद, तो काफ सूरह काफ में काफ वल कुरान मजीद, काफ कसम है कुरान मजीद की। ये कुरान की भी सिफत है कि वो ग्लोरियस है, बुजुर्गी वाला है, बड़ाई वाला है। तो अल्लाह ताला की ये सिफत हमें समझाती है कि हमें अल्लाह ताला की बड़ाई और उसकी बुजुर्गी के आगे झुक जाना चाहिए, और उसकी परफेक्शन को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। उसके अंदर परफेक्शन है। जैसे बाज दफा लोग उसके अहकामात या शरीयत या उसके फैसलों के अंदर मीन मेखे निकालते हैं, इतराजात करते हैं, तो जो उसके तो अफआल हैं, जो उसके फैसले हैं, जो उसके अहकामात हैं, सब में परफेक्शन है, तो फिर मीन मेखे कैसे निकाल सकते हैं, फिर नक्स कैसे निकाल सकते हैं? उसकी परफेक्शन के आगे तो हमें उसके गुण गाने चाहिए, उसकी तारीफें करनी चाहिए। इसीलिए हमीद उम मजीद आता है, और हमीद को भी हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम। आज हम मजीद देख रहे हैं, तो वो हमें तो चाहिए कि उसकी इतनी तारीफ करें, उसके आगे झुक जाएं, उसकी इबादत बजा लाएं। इतना परफेक्ट है, और उल्टा उसकी बातों को लेकर और फिर उनको अपनी अकल के ऊपर परख के और कहना कि ये तो बात समझ ही नहीं आती कि ये कैसे कह दी गई, ये तो सही नहीं है, या ऐसी कोई बात कहना, तो ये कभी भी जुर्रत नहीं करनी चाहिए। और जब आप कोई भी चीज देखें अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात में, तो उस वक्त जरूर सोचें कि वो जात बुलंद सिफात की मालिक है और कितनी शान वाली है जिसने इस चीज को बनाया। वो कितनी ऐब और नक्श से पाक जात होगी जिसने इस चीज को तख्लीक किया। कि हर चीज में आपको नजर आता है कैसे आसमान है, कैसे जमीन है, कैसे ये चरिंद परिंदे, जितनी अल्लाह ताला की मखलूकात में गौर करें हमें यही समझ में आता है कि वो जात कैसी होगी। वाकई वो जात अलमजीद है, ऑनरेबल जात है, और वो ये भी इसके अंदर माना है जिसका हाथ खुला हुआ है, बहुत खुले हाथ वाली जात। तो वो तो हर ऐब से पाक है और हर रोज नई शान में होता है। वो बुजुर्गी वाला है, उससे सिवा कोई कितनी अपने आप को समझे कि वो बड़ी शान वाला है, तो उसकी कोई कमाल, उसकी कोई सिफत वक्ती हो सकती है, और उसमें भी हजार कमियां होंगी। किसी को मौत आ जाएगी, किसी को हादसा आ जाएगा, किसी को बीमारी आ जाएगी, कोई वैसे ही वक्त के साथ साथ पुरानी हो जाएगी चीज़, मगर अल्लाह ताला वो ज़ात है जो बुलंद है, बुजुर्गी वाला है, अजमत वाला है, उसको ना मौत है ना उसके ऊपर कोई गलबा पा सकता है। असल में दुनिया में जितना भी शिर्क है वो इस वजह से है कि उन्होंने अल्लाह ताला की बुजुर्गी को समझा नहीं, उसकी शान को जाना ही नहीं, और वो उसकी बुजुर्गी के सामने किसी और की बुजुर्गी नहीं, उसकी अजमत के सामने किसी और की अजमत नहीं। और अगर की मखलूक में किसी को कोई थोड़ा सा मकाम मिल भी गया है तो वो भी उसकी अता है, इसीलिए वो सारी तारीफ उसके लिए है। ओके, किसी चीज की भी तारीफ करेंगे तो उसको उस रब ने दी हुई है। फरिश्ते उसकी शान और उसकी बुजुर्गी और उसकी अजमत को समझते हैं, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान चिरचिरा रहा है और उसको हक है कि वो चिरचिराए, कि उसमें एक बालिश्त भर भी जगह ऐसी नहीं है जहां पे कोई फरिश्ता अल्लाह ताला की तस्बीह ना बयान कर रहा हो, जहां पे कोई फरिश्ता क़याम में ना हो, रुकू में ना हो, सजदे में ना, अल्लाह ताला की इबादत में इतने फरिश्ते लगे कि वो जात बहुत बुजुर्गी वाली है। अल्लाह अकबर। और इसके बाद हमें फिर कुरान मजीद को भी बहुत वक्त देना चाहिए, और इसके साथ भी जितना आप इसको इज्जत दें और जितना इसके तिलावत करें और जितना इसको समझने में वक्त लगाएं वो करें, इसलिए कि इसकी भी शान क्या है कि ये भी मजीद है। और जितना आप वक्त लगाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कि अल्लाह ताला फरमाता है जिस किसी को मेरे जिक्र ने यानी कुरान मजीद की कसरत तिलावत ने ये मौका और ये वक्त नहीं दिया कि वो मुझसे कोई मांग सके और मुझसे दुआ कर सके, तो मैं उसको उन लोगों से भी ज़्यादा बेहतर चीज़ दूंगा जो मुझसे मांगते हैं। इतनी बड़ी बात है जो आप कुरान के साथ वक्त लगाते हैं। तो इमाम सुफियान ने यहाँ पे ये मसला बयान किया कि अल्लाह ताला की तौहीद बयान करना, उसकी हम्द बयान करना, उसकी तारीफ करना भी दुआ ही है, और जो लोग अल्लाह ताला की तारीफ और उसके जिक्र और तिलावत में मशगूल रहते हैं अल्लाह ताला उनको बिन मांगे अता फरमाता है। तो कभी ये ना सोचें कि मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है, मैंने तो इसके अंदर वो अस्कार कर रही हूँ, इसमें मेरा वक्त जा रहा है, इतनी तस्बीहात में मेरा इतना टाइम जा रहा है, मेरे पास कहाँ टाइम है। आप देखेंगे कि जब आप अपना वक्त इन चीज़ों में लगाएंगे तो अल्लाह ताला आपके वक्त में इतनी बरकत दे देगा कि जिस काम को आप करने जा रहे हैं वो काम जब जहाँ पे 2 घंटे का था वो 1 घंटे में हो जाएगा, आपके काम सिमट जाएंगे, आपको खुद महसूस होगा कि अल्लाह ताला इतनी बरकत। लोग सारा सारा दिन में खप जाते हैं, वो काम आपके जल्दी से ही हो जाएंगे। जब आप तस्बीहात को, अल्लाह के जिक्र को, कुरान करीम को, इनको वक्त देंगे तो अल्लाह ताला की किबरियाई बयान करना, उसकी अजमत बयान करना, ये जिक्र अजकार करना, ये और अल्लाह ताला की तारीफें बयान करना, ये हमारे वक्त का जिया नहीं है किसी तरह भी। देखिए एक बंदे ने काम करना है, वो गया फिर वहां पे ट्रैफिक में फंस गया, फिर आगे गया वो बंदा नहीं मिला, फिर उन्होंने कहा अभी यहाँ पे इंतजार करें, वो अभी आ रहा है, फिर उसका इंतजार में वक्त लग गया, फिर कितना कुछ पापड़ बेले और फिर उसका काम हुआ, और दूसरा सीधा गया और उसका काम हो गया और वो वापस भी आ गया। क्या फर्क था दोनों की वक्त में, एक के अल्लाह ताला ने बरकत डाल दी, दूसरे का बेबरकत आ वक्त। ये मैं जस्ट एक मिसाल दे रही हूँ, इसी तरह बेशुमार मिसालें। आप सुबह उठते आपको पता ही नहीं चलता वक्त कहाँ चला गया, दिन गुजर भी गया और आपका कोई काम ही नहीं हो पाता, और दूसरे बंदे ने सुबह सवेरे उठ के सारे काम करके भी और फारिग होके भी और अपने अज़कार भी सारे मुकम्मल कर लिए। और ये वो अल्लाह ताला का नाम है जो हम रोज लेते हैं। ठीक है, किस तरह से लेते हैं, हर नमाज में, कहाँ पे, दुरूद शरीफ के आखिर में आप देखें ना, इन्नका हमीदुम मजीद, दुरूद शरीफ शुरू होता है अल्लाह ताला के नाम से, अल्लाहुम्मा से शुरू होता है और एंड क्या होता है, अल्लाह ताला के इन दो नामों पे, हमीदुम मजीद पे। ठीक है, तो अल्लाह ताला के नाम के अंदर अल्लाह में तमाम अस्माए हुस्ना आ गए, और इसके जरिए से आपको पता है दुआ करना ऐसे ही है जैसे आप तमाम अस्माए हुस्ना के जरिए दुआ करें। और हमीदुल मजीद ये अल्लाह ताला के दो मुबारक नाम है, उसकी तमाम सिफात उसके जलाल की भी और उसके जमाल की भी इस इन दो नामों में रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो इसलिए अल मजीद नाम अल्लाह ताला का बड़ा अजीम नाम है, और आज जुमा का दिन है, आप उम्मीद है कि जानते होंगे कि खूब खूब आज के दिन हमने दुरूद शरीफ पढ़ना है, बल्कि जुमेरात की जब सूरज गुरूब होता है उसके बाद से ही दुरूद शरीफ शुरू करते हैं, और बेहतरीन यह है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें तो बेहतरीन है, बाकी भी मसनून दुरूद हैं वो भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी कोई मुजायका नहीं। और दुरूद शरीफ में आप क्या कहते हैं कि अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, जैसे आपने रहमत भेजी इब्राहिम अलैहि सलाम और उनकी आल पर, और आप हमीद काबिल तारीफ हैं और मजीद हैं। तो मजीद यहाँ पे यानी ते अंदर बुजुर्गी की सारी सिफात मौजूद है, और अल्लाह बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी आल पर, जैसे तूने बरकत नाजिल फरमाई इब्राहिम अलैहि सलाम और उनकी आल पर। तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है मोमिनों के कि वह दरूद भेजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, के सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था हम आप पे दुरूद कैसे पढ़ें, सलाम का तरीका तो बता दिया हमें तो दुरूद कैसे हम पढ़ें, सलाम तो वो कैसे करते थे ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और सलाम कर लेते थे, तो वो कहते अब हमें जब हुक्म आया दुरूद भेजने का तो कैसे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद इब्राहिमी सिखाया था, सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा, अल्लाह ताला ने ये ईमान वालों को हुक्म दिया। तो आप दरूद वैसे तो वैसे ही बकसरत पढ़े, दरूद पढ़ने से इंसान के गम दूर होते हैं, परेशानियां दूर होती हैं, 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुना माफ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं एक दफा दरूद भेजने से, अब आपके कामों में आसानियां होने शुरू हो जाएंगी। और दरूद हमें क्यों भेजना चाहिए, एक तो वैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मोहसिन हैं, हमें उनके ऊपर दरूद भेजना ही चाहिए, उनसे ज्यादा बड़ा एहसान हमारे ऊपर किसी का नहीं है, अल्लाह ताला के बाद जिस हस्ती का सबसे बड़ा एहसान है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे माँ बाप से भी ज्यादा उनका एहसान। और नंबर 2 कि जो जितना ज्यादा दुरूद भेजेगा कयामत के दिन उतना ही ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा, और नंबर 3 ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सिफारिश करेंगे उस दिन। तो अजान के बाद भी दुरूद पढ़ना चाहिए, जब आप अजान सुने तो उसके बाद दुरूद पढ़े, फिर अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़ी दावत ताम वाली दुआ पढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वसीला मांगे जो जन्नत में सबसे ऊंचा मकाम है। और वैसे तो अजान और इकामत के दरमियान जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है, तो दुरूद पढ़ेंगे तो दुरूद भी कबूल होगा, और उलमा कहते हैं दुरूद का तो 100% है कि वो कबूल होना है, 100%। इसी वजह से हम कहते हैं ना अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, वो इसी वजह से कि पहले दुरूद शरीफ पढ़ा आखिर में भी पढ़ा, बीच में हमारी भी दुआ कबूल हो जाए या अल्लाह। इसके साथ ये भी चली जाए। एक सहाबी फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफा देखा, आप मस्जिद में थे और सजदे में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना तवील सजदा किया, इतना लंबा कि मुझे ऐसे लगा जैसे आप वफात पा रहे हैं। तो जब आप सजदे से फारिग हुए तो मैंने सवाल किया कि आपने इतना लंबा सजदा क्यों किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जिब्राईल अलैहि सलाम ने आके खुशखबरी दी है, और वो खुशखबरी ये है कि आपकी उम्मत में से जो कोई भी एक मर्तबा दरूद पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। और इसी खुशी में मैंने सजदा किया। कभी हमें भी ये खुशी होती है कि हमें पढ़ने में 10 रहमतें मिलेंगी, 10 नेकियां मिलेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस पे सजदा शुक्र अदा किया कि मेरी उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने इतनी नेकियां रख दी। तो हम दुरूद पढ़ के कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एहसान नहीं कर रहे, बल्कि ये हमारे अपने लिए ही अच्छा है। हमें कितनी नेकियां मिल रही हैं और कितने हमारे गुनाह बख्शे जा रहे हैं, हमारे काम कितने आसान हो रहे हैं। हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होंगे कयामत के दिन। तो आज के आपका जिक्र पूरे दिन का दरू शरीफ है, और दरू शरीफ आप जब पढ़ते हैं तो याद रखें कि कई ऐसी दुआएं हैं कि जो मांगी नहीं होती, दरू शरीफ के जरिए ही इंसान की अल्लाह ताला वो दुआ पूरी कर देता है। इतनी बरकत है दुरूद शरीफ पढ़ने में। तो दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं, और आज के दिन जुमे की जो सुन्नतें हैं वो पूरी करें ताकि उनका भी सवाब मिले। और ये ऐसे काम हैं जो हम वैसे करते ही हैं, मगर आज हम ये सोच के करेंगे कि ये सुन्नत है। सबसे पहला काम ये कि मिसवाक करें, चाहे आप टूथब्रश बाकी दिनों में करते ही हैं, लेकिन जुमे के दिन चाहे थोड़ी देर की आपको जैसी भी आती है करनी, थोड़ा मुंह में मिसवाक रखें, थोड़ा मिसवाक यूज़ करें। फिर गुसल करें, और गुसल ऐसा जैसे गुसले जनाबत होता है कि सर भी धोएं और बिल्कुल अच्छा गुसल, और फिर साफ़ सुथरे कपड़े पहने, खुशबू मर्द लगाएं जिन्होंने बाहर जाना है, अगर औरतों ने बाहर जाना है तो ना लगाएं, घर पे रहना है तो लगा लें। फिर नाखून काटें और मस्जिद की तरफ जाएं, मस्जिद में जाके 2 रकत तहियतुल मस्जिद पढ़ें, और किसी को गर्दन ना फैलांगे कि आगे मैंने जाके बैठना है तो गर्दनें फैलांगेंगे, और इसका भी सवाब मिलेगा कि जहाँ पे आपको जगह मिलती है बैठ जाएं। और फिर एक और सुन्नत, खामोशी से खुतबा सुने, कोई बात नहीं करनी। आप ये तहिया करके जाएं कि मैंने जाना है, वहां पे कोई बात नहीं करनी। अगर खुतबा शुरू हो चुका है खामोशी से बैठ जाएं, अगर नहीं शुरू हुआ तो तब आपको जो रास्ते में मिल रहे हैं उनके साथ सलाम कर लें। फिर एक और सुन्नत, सूरह कहफ पढ़ें, फिर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, और फिर कबूलियत दुआ की जो एक घड़ी है जुमे के दिन, एक घड़ी ऐसी है जिसमें जो दुआ आप मांगेंगे वो कबूल होगी, और वो घड़ी बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी किल्लत का बताया भी कि वो बहुत थोड़ा सा टाइम है। अब उस टाइम को हमने कैच करना है, उस टाइम में किसी के भी, जिसको आम लफ्जों में कहते हैं हम, लॉटरी निकल सकती है कि कोई दुआ मांगेंगे वो कबूल हो जाएगी। अब इसकी तलाश के लिए बेहतरीन तो ये है कि असर के से मगरिब के दरमियान इस घड़ी को तलाश करें, कि जुमे के दिन हम अपनी इफ्तारी पहले ही बना लें, और फिर हम ये करें कि असर से मगरिब तक जो सलफ सालेहीन होते थे वो ये हर जुमे को, ये तो रमज़ान के जुमे तो बहुत ही कीमती हैं, इस रमज़ान में 4 जुमे ही आने हैं तो बहुत कीमती हैं, लेकिन वो तो आम जुमों में भी, चूंकि एक घड़ी ऐसी होती है तो आम जुमों में भी ये एहतमाम करते थे कि वो असर से मगरिब के दरमियान किसी से बातचीत नहीं करते थे, अलग होके बैठ जाते थे और सिर्फ अपनी इबादत किया करते थे और दुआएं मांगा करते थे। और आज भी कई मदारिस में भी यही तरीका कार है कि वो असर से मगरिब कुछ और नहीं करने देते, बस बैठ के अल्लाह का जिक्र करें। तो अगर आप भी अलग कर सकते हैं अपने आप को तो अलग कर लें, और उस वक्त बैठ के बस दुआएं करते रहें। फिर हम सोचते हैं हमारी दुआएं नहीं कबूल होती, क्या करें, किसी को कहते हैं, देखिए कोई आपके लिए दुआ करेगा ठीक है, लेकिन बस ऐसे ही कर लेगा, जो आप अपने लिए करेंगे ना वैसी कोई भी नहीं कर सकता आपके लिए दुआ। इसलिए और कुछ भी ना आपको आए, मसलन आपको दुआएं भी खत्म हो गई हैं, अब आपने सारी दुआएं मांगी, दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं, आपकी जो दुआएं आपको नहीं सूझी अभी तक, वो दुआएं भी कबूल हो जानी, जो आपको याद भी नहीं रही। और ये दुरूद जो आप पढ़ेंगे ना, ये फरिश्ते आपका नाम लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाएंगे। फरिश्तों की ड्यूटियां हैं कि वो जो दुरूद का आप ये तोहफा जब भी भेजते हैं, ये ऐसे ही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप जैसे कोई गिफ्ट भेज रहे हैं, बुके भेज रहे हैं, वो दरूद शरीफ है, वो फरिश्ते आपके नाम के साथ वहां पे बताएंगे। तो आपके लिए कितनी बड़ी खुशकिस्मती है। दरूद शरीफ को पढ़ना ना भूलिएगा। आज सारा दिन हमने अपनी दुआ भी दरूद शरीफ ही बनाना है और अपना जिक्र भी दरूद शरीफ ही बनाना है। तो अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इसको हमारे लिए आखरत का तोशा बना ले और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नसीब फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।